ग्यारह घ कल्हण राज तरंगड़ी। कल्हण राज तरंगड़ी कश्मीरी इतिहास लेखन की परंपरा में कल्हण और उसकी राज तरंगड़ी वस्तुतः एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन तिथि परक इतिहास ग्रंथ है। कल्हण के जीवन वृत्त के संबंध में पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु समकालीन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर विद्वानों ने यह लिखा है कि कल्हण एक कश्मीरी ब्राह्मण थे तथा भार्गव कुल की सारस्वत शाखा से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम चाणक्य या चंपक था, जिसे श्री स्टीन महोदय ने कश्मीर के राजा हर्ष का मंत्री स्वीकारा है। चाणक्य या चंपक 1135 ईस्वी तक जीवित रहे, परंतु उन्होंने हर्ष के मृत्योपरांत राज्य कार्य में भाग नहीं लिया तथा यह भी ज्ञात नहीं होता कि कल्हण ने लोहर राजवंश के राजाओं के अधीन किसी आधिकारिक पद पर नियुक्त रहे। अनेक साक्ष्यों से संकेतित है कि अपने महान ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखन काल में कल्हण युवक नहीं थे। कल्हण ने राजतरंगिणी के लेखन का कार्य 1148 ईस्वी में प्रारंभ किया और 2 वर्षों के काल में ही इसे पूरा कर दिया। राजतरंगिणी ग्रंथ 8 सर्गों में 8000 श्लोकों में लिखी गई है। इसका प्रामाणिक संस्करण और अनुवाद आर.एल. स्टीन द्वारा किया गया। इस ग्रंथ को सामान्यतया 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम से तृतीय तरंग में कल्हण ने विवरण को परंपरा के आधार पर प्रस्तुत किया है। ख चौथे से छठवें तरंग में काकोट तथा उत्पल वंशों का विवरण दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों तथा समकालीन इतिहासकारों के स्रोतों से सामग्री का उपयोग किया। ग सातवें से आठवें तरंग में 2 लोहर वंशों का विवरण दिया है, जो अपनी व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथा प्रत्यक्ष दर्शन से संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर दिया है तथा कतिपय तथ्यों को उन्होंने अन्य स्रोतों से संग्रहित तथ्यों से पूर्ण किया है। यद्यपि कल्हण ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में दरबारी संस्कृत श्लोकों के लेखन में मधुर प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने प्रत्येक राजा के राज्यारोहण की तिथियों को दूसरे और तीसरे भाग में दिया है, परंतु सभी घटनाओं को तिथि न दे सके। स्रोत डॉक्टर आर.के. मजूमदार ने लिखा है कि कल्हण राजतरंगिणी लेखन में अपने पूर्वापर एवं समकालीन स्रोतों चिट्ठा शासनादेश अभिलेखों मुद्राओं प्राचीन स्मारकों तथा राजकीय अभिलेखागारों में सुरक्षित राजावलियों एवं वंशावलियों का उपयोग किया है। कल्हण ने अपने ग्रंथ के उपोत्थान्त के श्लोकों में उन स्रोतों का उल्लेख किया है जिसमें प्रथमतः समकालीन राजाओं के संबंध में लिखे गए सैनिक विवरण हैं जो बिखरे हुए रूप में थे। उन्होंने कुछ स्रोतों की आलोचना भी की है, जैसा कि सुवर्त ने लिखा है। इसी प्रकार क्षेमेंद्र के क्रॉनिकल की भी आलोचना किया है। डॉक्टर वॉशन ने लिखा है कि कल्हण ने अपने पूर्ववर्ती 11 इतिहासकारों तथा नीलमत पुराण का उपयोग किया। उन्होंने स्पष्टतया स्वीकार किया है कि कश्मीर के नरेशों से संबंधित विवरण अपने पूर्वों की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक है। प्रथम का 16वां कल्हण ने तथ्यों के संग्रह और तिथिक्रमों को ही विवरण का आधार नहीं बनाया है, अपितु मंदिरों और मठों में रखे गए संलेखों अभिलेखों तथा प्रशस्तियों का उपयोग किया है। प्रथम का 15वां कल्हण ने प्राचीन मुद्राओं को भी अपने लेखन का आधार बनाया तथा मौखिक और लिखित तत्कालीन हिंदू जीवन में प्रचलित 3 परंपराओं को भी स्वीकार किया है। ललितादित्य की मृत्यु 769 ईस्वी से संबंधित परंपराओं का उल्लेख किया है। चौथे का 367वां से 70वां परंतु कल्हण ने अपनी ओर से किसी को भी सही नहीं माना है, अपितु यह लिखा है कि जब बड़ों की मृत्यु होती है तो उनके संबंध में अनेक प्रकार की कहानियां लोक जीवन में प्रचलित हो जाती हैं। चौथे का 371वां श्लोक इसी प्रकार यशस्कर के मृत्यु के संबंध में प्रचलित 2 परंपराओं का उल्लेख किया है। परंतु किसी भी परंपरा को कल्लर ने प्रचलन रूप में स्वीकार नहीं किया है, अपितु तो उसकी प्रामाणिकता के संबंध में अपना विवेचन भी दिया है। इस प्रकार कल्लर ने विभिन्न स्रोतों से साक्ष्यों को एकत्रित कर इतिहास भुवन का जो वर्णन किया वह आधुनिक इतिहास लेखन में प्रचलित सभी विधाओं को स्वीकारा है। राजतरंगिणी की विषय वस्तु संध्याकर नंदिन के कुछ ही वर्षों पश्चात कश्मीर में कल्लर ने राजतरंगिणी की रचना की। वह प्रारंभ से लेकर अपने समय तक का कश्मीर का वृहत इतिहास लिखना चाहता था। उसने प्राचीन इतिहास परंपरा में लिखा जिसमें विल्हड़ के समान लेखकों के विपरीत सौंदर्य शास्त्रीय आवश्यकताओं के प्रति बहुत कम छूट दी गई है। अपने इतिहास लेखन में उसने अन्य स्रोतों प्रलेखों अभिलेखों मुद्राओं दानपत्रों तथा प्राचीन स्मारकों का समीक्षात्मक बुद्धि का व्यवहार करते हुए उपयोग किया। उसने इस आदर्श का प्रतिपादन किया कि इतिहासकार को सर्वथा निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसने स्वयं कश्मीर के इतिहास पर लिखित अन्य पूर्ववर्ती ग्रंथों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। परवर्ती काव्य में व्यवहृत परंपरा के विपरीत पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग करने तथा लक्षणात्मक विवरणों का यथासंभव निराश करने पर भी कल्लर ने काव्य के मूल सिद्धांत एक निश्चित रस विशेष की उत्पत्ति के लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखा है। उन्होंने शांत रस चुना है। कल्लर ब्राह्मण थे तथा संभवतः भार्गव कुल की सारस्वत शाखा से संबद्ध थे। वे एक मंत्री के पुत्र थे और इस प्रकार राजनीतिक मामलों तथा राजनीतिज्ञों के चरित्र से भलीभांति परिचित थे। राजतरंगिणी किसी एक शासन वंश का इतिहास न होकर कश्मीर का सामान्य इतिहास है। कल्लर इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पूर्ववर्ती शासन वंशी इतिहासों को भी अपना स्रोत बनाया है। उनका विवरण कश्मीर की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिसे पुराणों में चर्चित मनु वैवस्वत की परंपराओं से संबंध किया गया है। कल्लर का विवरण विक्रमादित्य द्वितीय जिसने मातृगुप्त को सिंहासन पर बिठाया के समय से बहुत कुछ विश्वसनीय होता दिखाई पड़ता है। उसके पहले प्रथमतः कुछ पौराणिक शासकों का उल्लेख है जिसके बाद कुछ कुषाण शासकों की चर्चा है। इनके तथा मातृगुप्त के बीच कई शासकों के नाम आते हैं जो प्रायः हूल समझे गए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः कश्मीर का स्वतंत्र इतिहास मातृगुप्त के समय से ही प्रारंभ होता है। इसके पूर्व वह कुषाण साम्राज्य तथा पहले मौर्य साम्राज्य का अंग था। कश्मीरी इतिहासकारों की क्षेत्रीय देशभक्ति ने इन ऐतिहासिक तथ्यों का गोपन करते हुए अपने शासकों की प्राचीनता को भारत युद्ध तक खोजने को प्रेरित किया। मातृगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों के विवरण के पश्चात कश्मीर पर हूण आधिपत्य का उल्लेख है। कालकोट शासन वंश के प्रथम शासक दुर्लभ वर्धन 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ हम निश्चित ऐतिहासिक भूमि प्राप्त करते हैं। बाद में कुछ कश्मीरी इतिहासकारों ने कल्लर की कृति के पूरक ग्रंथ लिखे। इनमें 15वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न जूनराज तथा उनके शिष्य श्रीवर के नाम तथा 16वीं शताब्दी के प्राच्यभर तथा शुक के नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय हैं। कल्लर का इतिहास सहजैव दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन युग जो महाभारत काल से गोनंदीय वंश के अंत तक रहा और अर्वाचीन युग जो कालकोट वंश के प्रादुर्भाव से कल्लर के समय तक रहा। प्राचीन युग का कल्लर का कालक्रम भ्रांतिमूलक है। स्टाइन ने सिद्ध किया है कि कल्लर की कालगणना के अनुसार अशोक 3री शती ईसा पूर्व, कनिष्क 2री शती ईस्वी, मिहिर कुल 6ठी शती ईस्वी, तोरमाण 5वीं शती ईस्वी, खिगिल और लहखफा 5वीं 6ठी शती ईस्वी का काल क्रमशः 1122 पूर्व ईस्वी, 704 से 634 पूर्व ईस्वी प्रथम शती ईस्वी और 209 से 222 ईस्वी ठहराता है। तथापि कल्लर द्वारा दिया गया इन राजाओं का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कुछ शुद्ध है। इनके विषय में कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं। 7वीं शती ईस्वी से कल्लर का इतिवृत्त वैज्ञानिक इतिहास का रूप धारण करने लगता है। उत्पल वंश 855 से ईस्वी तक आते आते तो इनकी कृति में अत्यंत सूक्ष्मता, शुद्धता और तर्कपरता आ जाती है। कल्लड़ की सत्य प्रियता का इससे अच्छा और क्या प्रमाण हो सकता है। उन्होंने चक्रवर्मा, क्षेमगुप्त और कलश के दुराचारों का खुलकर वर्णन किया है। साम्राज्ञी दिद्दा तथा राजा यशस्कर जैसे योग्य शासकों की कुनीति पर पर्दा ही डाला। कल्लड़ ने कश्मीर के राज्य विधान का सजीव वर्णन किया है। उन्होंने जयापीठ के कामस्थ कर्मचारियों के अत्याचारों पर प्रचुर प्रकाश डाला है। शंकर वर्मा के मंदिरों की संपत्ति जब्त करने और बेगार लेने का उनका वर्णन मार्मिक है। पर्वगुप्त संग्राम राज, अनंत कलश और हर्ष की कुनीतियों का उनका वर्णन पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने अवंती वर्मा के सुधारों, मंत्री सुथ्य की बाढ़ों को रोकने की नीति और अन्य के भावों को कम करने की योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कल्लड़ ने बाढ़ों, अग्निकांडों और दुर्भिक्षों का ज्वलंत वर्णन किया है। उन्होंने डामरों की सामंतशाही और उसके उत्पातों पर भी काफी प्रकाश डाला है। हर्ष के समय से ये डामर सामंत कश्मीर के लिए आतंक बन गए थे। भिक्षाचर के राज्यकाल में उन्होंने बहुत लूट खसोट मचाई थी। कल्लड़ ने उन्हें दस्यु कहा है। उनके अतिरिक्त कामस्थों का अत्याचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। कल्लड़ ने राजतरंगिणी 8वें के 50वें श्लोक में उनकी जिघृक्षा और निशंसता का नग्न चित्र खींचा है। भदेश्वर और चंद्रमुख 7वें के 38वें का अनन्य चरम सीमा पर पहुंच गया था। आरंभ में इनके पास कौड़ी नहीं थी, किंतु थोड़े ही समय में वे करोड़पति हो गए थे। व्यापारी वर्ग की छीना झपटी भी बहुत बड़ी चढ़ी थी। कल्लड़ ने लिखा है कि भद्रमुख होते हुए वे व्याघ्र के समान भयानक थे। उन्होंने उनका व्यंग चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा कि उनके ललाट कर्ण और वक्ष चंदन चर्चित होते थे। उनके मुख सुई के समान बारीक होते थे। उनके उदर बहुत विशाल थे और वे क्षण मात्र में रक्त मांस सहित जीवन का शोषण करने में कुशल थे। कल्लड़ ने धोखेबाजों और गुंडों का भी सजीव चित्रण किया है। ऐसे लोग कलश के साथियों में थे। कल्लड़ ने विवाहित तपस्वियों, मत्स्य की आहुति देने वाले मद्यप ब्राह्मण गुरुओं और तंत्रिकों स्त्रियों की भर्त्सना की है। प्रायः ब्राह्मण घूस लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्लड़ की राजतरंगिणी 11वीं 12वीं सदी के समाज का सुंदर और सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेखक की शैली में अपूर्व प्रवाह और लालित्य है। उनकी कृति ऐतिहासिक दृष्टि से बाण की रचना से अधिक उत्कृष्ट है। कल्लड़ की राजतरंगिणी को जोनराज ने अपने और आगे बढ़ाया। वे सुल्तान जैनुल आबदीन 1411 से 1463 के समकालीन थे। उनके बाबा लौलराज ने अपनी भूमि के 10 प्रस्थों में से एक का विक्रय पत्र एक व्यक्ति के नाम पर लिख दिया था। लौलराज के निधन के बाद उनका पुत्र नौनराज दुर्बल था, अतः क्रेता ने समस्त 10 प्रस्थों का अधिकार कर लिया था। साथ ही विक्रय पत्र में भी जालसाजी करके एक का 10 बना दिया था। जोनराज ने सुल्तान के यहाँ इस विषय का अभियोग प्रस्तुत किया। सुल्तान ने जोनराज की भूमि उसे वापस करा दी। तब से सुल्तान और जोनराज का परिचय बन गया और उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की। यह 1150 से 1459 तक का इतिहास है। कल्लड़ की इतिहास दृष्टि। कल्लड़ ने इतिहासकार को विद्वत वर्ग से पृथक नहीं माना है। वह अपने को कवि तथा अपने ग्रंथ को काव्य मानते हैं, क्योंकि कविर मनीषी प्रभु स्वयंभू है। कवि कवि ही अपने देवी दृष्टि से अतीत का साक्षात्कार करके लोक के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कश्मीर के अन्य प्राचीन राजाओं की महान उपलब्धियों का विवरण इसलिए नहीं लिखा जा सका क्योंकि उनके काल में देश ने कोई उन्नति नहीं की। डॉक्टर बाशन ने लिखा कि कल्लड़ की प्रथम दृष्टि थी कि उनके पास कम से कम ऐतिहासिक सत्य की कुछ अवधारणा थी। दूसरी दृष्टि नैतिक शिक्षा प्रदान करने की थी। कल्लण का विचार था कि इतिहास अधिक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि प्राचीन शासन कालों के ऐतिहासिक अध्ययन से भविष्य के राजाओं के भाग्यों तथा दुर्भाग्यों को देखने की अधिक शक्तिशाली दूरदृष्टि प्राप्त होती है। कल्लण ने राजतरंगिणी के लेखन में अपने मातृभूमि कश्मीर के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट किया है कि इस श्रेष्ठ भूमि को कोई विदेशी विजित नहीं कर सकता है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। परंतु कल्लण ने कहीं भी राष्ट्रीयता की अति उत्साहपूर्ण व्यंजना नहीं किया है। कल्लण इतिहास लेखन में पक्षपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनका कथन है कि दैट पोएट एलोन इज वर्थी ऑफ प्रेस हुज वर्ड लाइक दैट ऑफ अ जज कीप्स फ्री फ्रॉम लीव एंड हेट्रेट इन रिलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ द पार्ट। 117। कल्लण ने इन सिद्धांतों का मात्र प्रतिपादन ही नहीं किया, अपितु उसके अनुसार इतिहास लेखन का कार्य भी किया। कल्लण ने घटनाओं का वर्णन जिस प्रकार स्पष्ट एवं सत्य रूप में प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार राजाओं के क्रियाकलापों के वर्णन में निरपेक्षता का भी पालन किया है। कल्लण ने एक और जहाँ अपने समकालीन नरेश जयसिंह के उत्तम गुणों की प्रशंसा की है, वहीं दूसरी ओर जयसिंह द्वारा मंत्री की सूची दी गई हत्या की भी निंदा की है। कल्लण के ऐतिहासिक दृष्टि को उसके कर्म के सिद्धांत में विश्वास से जाना जा सकता है। यद्यपि वह अमानवीय शक्तियों को भी स्वीकारता है, परंतु कर्म द्वारा मनुष्य घटनाओं को स्वरूप प्रदान करता है, यह उनके विवरणों में दृष्टव्य है। कर्म मौलिक नैतिक समर्थन प्रदान करता है तथा बुरा कार्य करने वालों को इस जन्म में या दूसरे जन्म में दंड प्राप्त होता है। दूसरे का 77वां श्लोक। भाग्य राजाओं की इच्छा के विपरीत भी ले जाता है। 7वें का 7वां श्लोक। कल्लण ने विधात्री 7वें का 1372वां श्लोक का उल्लेख किया, जिसका अनुवाद स्टीन ने भाग्य किया है और ईश्वर की शक्ति माना है। अर्थात विधात्री मानवीय रूपों को प्रमाणित करती है। मिहिर कुल अधिक दिनों तक इसलिए शासन कर सका क्योंकि ईश्वर उसका संरक्षक था। पहले का 324वां श्लोक। परंतु कल्लण यह मानते हैं कि आत्मविश्वासी और शक्तिशाली राजा ही कश्मीर की रक्षा कर सकता है। कल्लण राजा को दैवी नहीं मानते हैं। उनका मत है कि राजा अपनी प्रजा का पिता होता है, ईश्वर नहीं। 5वें का 350वां श्लोक। राजा का कर्म उसकी प्रजा के से अंतः संबंधित होती है। अच्छे राजा अच्छी प्रजा से ही उत्थित होते हैं। पहले का 127वां तथा चौथे का 39वां पहले का 187वां और चौथे का 39वां अत्याचारी मिहिर कुल का अंत प्रजा के उत्तम गुणों के कारण ही हुआ। पहले का 325वां। राजा अपनी प्रजा का ही एक अंग होता है। राजा अपनी भूमि, जनता, वातावरण, पशु आदि सहित एक पूर्ण सावयव होता है। इस प्रकार कल्लण ने इतिहास लेखन की पूर्व परंपराओं से पूर्णतया पृथक एक तिथिक्रमिक इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेष्ठ कार्य किया। ऐतिहासिक घटनाओं में न्यायशील न्यायाधीश की दृष्टि को स्वीकार तथा निरपेक्ष इतिहास लेखन का आदर्श प्रस्तुत किया। तथ्यों का संग्रह कर उसकी सत्यता का विश्लेषण किया। प्रत्यक्ष दर्शित घटनाओं में भी निरपेक्षता का पूर्ण निर्वाह किया है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक कृति और कल्लण एक श्रेष्ठ इतिहासकार के रूप में मान्य है।